ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस to know about the stories of the Brahma Kumaris of the past 75 years, to tell us the story of the Brahma Kumaris, we will have the most experienced Dadi Ratan Mohini, who will be joining us very soon. Until she comes, I will take the opportunity to share with you some stories of the Brahma Kumaris that has touched my heart. I have been with the Brahma Kumaris for the past 42 years, and what I know is the story of the Brahma Kumari started in the year 1936 in Karachi, which is now part of Pakistan, when a famous diamond merchant named Dada Lake Raj became an instrument for God to establish this organization called Brahma Kumaris World Spiritual University. In the beginning, it was not called Brahma Kumaris Spiritual University. For the first 14 years, it was called Om Mandali. Why? Because Brahma Baba means Dada Lake Raj, who became the instrument for God, used to chant Om. And as he would chant this sacred word Om, the audience who used to be present in front of him used to totally experience the meaning of Om. What is the meaning of Om? Om is a word made up of three letters. A, U, Ma. Which means Atma. Translated into English as soul. So no knowledge was given. There was only the chanting by the founder father, this word Om, and the whole gathering will experience the bliss of being a soul. Because without self-realization, there cannot be God-realization. I remember one of the senior sisters whom I came in contact in 1968. She shared her experience when she first came to Om Mandali, a congregation where this Om chanting was happening. She was very sorrowful because she was married a few months ago and lost her husband, and the whole family was suffering because of that loss. So somebody told that family, if you go to this gathering where they chant Om, you will get peace. So she came, and the founder father, Prajapita Brahma, who was called Lekaraj before, when she came and sat in front of him, he just asked her, "Who are you?" She said, "I am a sorrowful human being." He asked, "What is this world like?" She said, "Full of sorrow." Then Brahma Baba took a piece of paper and he just drew, you know, like a human, just a skeleton, like a face, hands, feet, like this, and put a dot in the forehead. And he explained to her, "Look, this is the body made out of bone, skeleton and muscles. And you are a living being, a soul in the center of the forehead." But Baba was speaking, being the embodiment of that consciousness. And so, the person who was sitting in front of him instantly experienced, realized, "I am a soul." So then, Baba made her to sit in silence. He said, "Let us meditate." So, she just looked into the eyes of Brahma Baba and she began to experience practically, "I am a soul." One is to know theoretically, "I am a soul." And the second thing is to put it into experience. That is what we call meditation. So she sat there for 5 minutes. And she did not come out of that experience. So when she came out of that experience, Brahma Baba asked her, "Who are you now?" She said, "I am a peaceful soul." "What the world is like?" She said, "Full of peace." You see, transformation in just the consciousness, by realizing she did not believe she was a soul because she was told, but she felt that this body was only my costume, perishable, the energy in the center of my forehead was eternal. And the nature of that eternal energy is peace. So she went back home and she went and told everybody at home who were suffering from sorrow, "You are a peaceful soul, you are a peaceful soul, you are a peaceful soul." So the whole family was filled with peace. So this is why in the beginning, not much knowledge was given. It was more of experience. And this news, you know, anybody who comes to Om Mandali, where the congregation where they chant Om, they are able to experience themselves who they are, and they are able to experience their connection with God became a hot news at that time. And that is how this organization started. There was no advertisement, there was no newspaper, no media at that time. It was just the word of mouth. The souls who came, who experienced, when they went back home, they shared and they brought more members of the family. And so for the first 14 years, it was an experiential period what we call it as the time of tapasya, intense meditation. So the one unique feature of the Brahma Kumaris is actually deep understanding about the self. Unless I understand who I am really, I will not be able to make accurate connection with God. So we may be remembering God before, but to remember in the consciousness of the soul, that is the new knowledge people got in the beginning, and that is why they were able to experience the true nature of the soul, which was peace, bliss, truth, happiness. And so they were able to surrender themselves for that experience, which they could not get, even though they were all from well-to-do families. And so in the beginning, Om Mandali grew like that. So there were more than 300 to 400 men and women who came forward to practice this on a daily basis and who wanted to dedicate their life to this experience. So that is how they all stayed together with our founder father, Prajapita Brahma, for the first 14 years. So in that 14 years, they were able to realize who they are. They are able to have the recognition of who God is. You know, sometimes people ask this question, do you believe Brahma as your guru? Does God only speak to him? But in fact, we don't look at Prajapita Brahma as our guru. But in fact, when God was preparing him to make him as the instrument, he had many visions before. He himself was a devotee. He himself was praying to God. But when he was in the age of 60, so when he had this vision that how this world, you know, at that time when there was no name of nuclear war, he had the vision of the world being transformed through three forms of forces, like natural calamities, civil war, atomic war. And because Dada Lekraj, who was very kind-hearted, generous-hearted, compassionate, see, he was in deep contemplation after having this vision. Then after 3 days, he had another vision where he saw the world being transformed into heaven, golden age, what we call it. He saw in the vision tiny stars falling from the sky as they fell onto this earth, becoming prince and princesses. And then he heard the voice from the ether, you have to become an instrument to create such a world. And the voice disappeared. He was wondering, someone told me I have to become instrument, but how? So after that he had several visions. It was the preparation that God was making, preparing him to use him as the instrument. So when practically one day, when it was a family gathering, this is how, you know, the real incarnation of the Supreme Soul took place into his body. So it was a family gathering, but in that gathering, he was sitting and there was some strong pull, magnetic pull towards God. So he couldn't sit in that gathering, so he got up, he went to his room. So his daughter-in-law followed him, because Baba never does that kind of action when there is a family gathering of that kind. So he went and sat in his room on his bed, and his eyes were open, and the daughter-in-law was standing near the door, and she saw the total change in Baba's whole form. The room was literally lit with bright light, and there was the voice, I am the blissful one, I am the knowledgeful one, I am the truth. So that voice, that supreme light was entering into the body of Brahma, and his eyes were open, and the whole room was lit, literally lit. And then there was silence. Literally, the daughter-in-law who saw this scene, she has shared her experience. And for some time, there was total silence. So that was the moment when the supreme light began to use Dada Lekraj's body, who was named later as Prajapita Brahma. Brahma is actually the name of the creator. Prajapita means father of the people. So why this name was given to him later was because whatever knowledge that was spoken through the mouth of Brahma, and whoever heard that knowledge, they were adopted as sons and daughters. So that is how, when the organization, when it moved from Karachi to India in the early 50s, when we came to Mount Abu, it is only then we were called Brahma Kumaris, Ishwariya Vishwavidyalaya, or in other words, Brahma Kumaris World Spiritual University. So Brahma Kumaris and Brahma Kumars means sons and daughters of Prajapita Brahma, but as souls, we are all children of one supreme. So this morning I was asking in my group, how many fathers do you have? Most of them said one father. So what do you think? How many fathers do we have? How many fathers do you have? How many of you think you have two fathers? Raise your hand. Very few. The rest of you, how many fathers do you have? Only one? Actually, we are all souls, right? And we are in the body. So we are two in one, right? Body and soul. So that must be two creators also. You cannot have a body without having a creator for the body. God did not create this body. It is a product of my parents, isn't it? So that is why we have physical mother and father. And we are also souls. We cannot say we have a soul. You know, sometimes by mistake we say, so please don't give sorrow to my soul. Can we say like that? So if you say, don't give sorrow to my soul, so who am I? So I can say, don't give sorrow to I, the soul. So soul also have a creator. So we have two fathers. Father for the body and Father for the soul. And of course, the soul is eternal. God is also eternal. It is not that we were created out of nothing. So how we were created, that is a mystery. That is what we come to understand when we come to Brahma Kumaris. So when God Shiva, the Supreme Light, made Brahma Baba the instrument, and when we listen to the knowledge, the first lesson he taught to the entire humanity is the knowledge of the self. Who am I? What is the real meaning of the two words, I and mine? So when I am able to understand I am a soul, and when I realize I am a soul, it is like receiving a new life. You know, before understanding the knowledge of the soul was in the body, but we were unaware of the existence of the soul. So in other words, we can say we were all dead. Do you agree? The soul is in the body, and I don't know I am a soul, but I'm living in this body without knowing I am a soul. So it is equal to dead body, isn't it? Dead bodies don't have souls. We are souls, but we did not know we are souls. So we were living as dead. So what did God do? He came and gave life. No, that is why in Christianity they say God give the breath, you know, awaken the dead from the grave. Not literally somebody who is physically dead can be awakened. But we were spiritually awakened by God by whispering the knowledge into our ears, you are a soul. It's not enough to listen through the ears when that knowledge of the soul touches my heart, then I get new life. No, that is why we say to come to Raja Yoga is to receive the gift of third eye. How many of you feel since you are here, you have received that gift of third eye? Can I see some hands? The gift of third eye, which means realizing I am a soul. It is like a blind person getting an eyesight. You know, when a blind person gets an eyesight, for the first time he can see himself. For the first time he can see others. How happy he will be. That is how I felt when I came to Raj Yoga. You know, when I first heard the knowledge of the soul and I realized I am a soul, it was like an eye-opener. That joy, that happiness has no words to explain. Because once we get that gift of divine intellect, the third eye, not only we are able to see ourselves, but we are able to see God. We are able to even see the residence from where the souls have come. So this is how God adopts us through Prajapita Brahma and we become Brahma Kumars and Kumaris. So actually this knowledge of being a soul, child of the Supreme Soul, what is called yoga, actually brings not only close to ourselves, but it brings a kind of universal brotherhood. And so, you know, for the first 14 years, those who came to the founder father in Pakistan, Karachi, they stayed indoors and they spent most of the time practicing this knowledge in action. So I suggest sometime to myself, if they have practiced 14 years, the awareness of the soul, awareness of being child of God, should we not at least practice 14 minutes every day? To come to that realization, who am I really? So it is a great achievement. So then our headquarters from Karachi moved to India, which is now our headquarters. So Dadi Ratan Mohini, our senior sister, is with us. So can we welcome her with one hand waving? We thank Dadi Ratan Mohini very much for making time to be with us this evening. I just introduce Dadi in a few words and then she will share her own original experience, because she is the right person to talk about the stories of the Brahma Kumaris, because she has been part of this organization from the beginning, since 1936-37, for the past 75 years. So her name, Ratan Mohini, means jewel that attracts. So Dadi Ratan Mohini is one of the original jewels of the organization. And she has had wonderful experiences herself of soul consciousness, God consciousness, being very close to the founder father and all the senior faculties of this organization. And at present, of course, she has many roles to play. She oversees the training, various types of training that is given in our organization. She is also taking care of the youth group. We call her Youth Dadi. You know, even though she is 75, more than 75 years, more than 80, I think, but she travels and moves like 18 years old. So she's full of enthusiasm and she's a great source of inspiration for all of us. And she also takes care of one of the state, Rajasthan, where we have many centers. So Ratan Mohini Dadi is going to share with us her own stories with the founder father, Prajapita Brahma, and the expansion of the Brahma Kumaris from Mount Abu into not only in India, outside India, and how she has herself experienced deep soul consciousness in meditation. Over to Ratan Mohini Dadi.
Om Shanti. Om Shanti. आप सभी को ओम शांति का अर्थ तो पता चल ही गया होगा, आप सब सर्वशक्तिवान सुप्रीम फादर के संतान, आप सबको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि सुप्रीम फादर जो सर्व आत्माओं का पिता है, हम सर्व मनुष्य आत्माएं, हम सबका पिता एक, और उस पिता के घर में विश्व से चुनी हुई आत्माएं आकर के पहुंची है, जरूर है आप सबको अपने बाप से वह अधिकार लेना होगा जिससे आप अपनी जीवन में सदा एकाग्रता, मन की एकाग्रता, सदा अंदर शांति, और वह शांति जो हमें खुशी देती रहे, जो हमें हर समय दुनिया की कारोबार में चलते हुए भी, शरीर से काम करते हुए भी, इस रीति थकावट महसूस न हो जो हम ऐसे अपन को टायर्ड महसूस करें जो अब तो हमसे कुछ नहीं हो सकता है। कहा जाता है जीवन में खुशी है तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी वो शक्ति है, और यह सुप्रीम फादर को जानने से अंदर आत्मा उस शक्ति का अनुभव करती है वास्तव में शरीर होते हुए स्वयं को हमें क्या समझना है। मैं समझती हूं यह सेल्फ रियलाइजेशन, इसका स्पष्टीकरण तो आप सबको मिल गया होगा जिससे इस बात को तो रियलाइज कर दिया होगा कि वास्तव में शरीर और आत्मा दो अलग होते हुए भी आत्मा की शक्ति शरीर को चलाती है और ऐसे शरीर के अंदर विराजमान है गुप्त जो आत्मा ने शरीर को धारण किया है। अर्थात अगर हम यथार्थ शब्द में कहें कि मैंने शरीर को धारण किया है परंतु शरीर से काम कराते कराते स्वयं को इस प्रकार से समझ लिया है जो शरीर का नाम, नाम ही मैं हूं और ये ही मेरा रूप है। दुनिया में देखते हैं, इस बात को भी रियलाइज करते हैं, कोई शरीर छोड़ता है कहेंगे फलाना मर गया, शरीर के नाम से कहेंगे मर गया। इस बात की नॉलेज जब हम आत्माओं के पिता परमात्मा ने हमें दी है तो उस बात को विचार करने से, समझने से, सोचने से समझ में आया है बरोबर शरीर से हम काम ले रहे हैं लेकिन शरीर से चलाने वाली शक्ति जिसके लिए गाया जाता है, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, शरीर विनाशी है। अब इसका डिटेल विस्तार स्पष्टीकरण आपको मिल चुका है, और उस बात से अगर उस बात पर अभ्यास किया होगा तो ये बात रियलाइजेशन में आ गई होंगी कि बरोबर इस शरीर को चलाने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा। और जब हम, जैसे आपको बताया गया है, यह नॉलेज, वैसे दुनिया में ये बात मानी जाती है आत्मा शरीर के अंदर है, हम सब आत्मा एक पिता की संतान है, परंतु मानते हुए ये यथार्थ जानकारी अब तक किसी ने ऐसे नहीं दिया, नहीं समझाया, जो उस बात को हम रियलाइज करके, पहचान करके, और उस पहचान को अपने जीवन के अनुभव में लाएं, जिस अनुभव से हम ये मान सके, महसूस कर सके, कैसे मैं शरीर से अलग हूं, अलग होते भी कंबाइंड होकर के हम कार्य कर रहे हैं, कंबाइंड होते कर्म करते, और हम अपने को न्यारा मान करके इस शरीर की कर्म इंद्रियों से यथारथ कर्म कराएं, तो हम जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए, जिसको जब ये पिताश्री के द्वारा यह ईश्वरी कार्य शुरू हुआ, जिसको शुरू शुरू में अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, भारत में यज्ञ का महत्व बहुत है, और यज्ञ में यहाँ भारत के अंदर यह जब यज्ञ रचते हैं, जिसके अंदर अग्नि जला करके और उसमें स्थूल चीजें जो मानी हुई है वो डालते जाते, स्वाहा स्वाहा ऐसे करते हैं, इसका भक्ति मार्ग में इस प्रकार से यादगार चला रहा है। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा पिता ने जब पिताश्री के द्वारा जो भी भक्ति मार्ग की रीत रसम जो भी हम कार्य करते थे, मूर्ति रख के उसकी पूजा करते, जिन देवताओं की पूजा करते, जिनों की जो जो महिमा करते, भावनावश तो करते रहे, परंतु यथार्थ जानकारी नहीं थी। जब परमात्मा ने इस बात की हमें पूरी पहचान दी, जिन देवताओं को, और उसमें मुख्य श्री कृष्ण, जिसको आज मनुष्य सब भगवान के नाम से मानते हैं, उनकी पूरी पहचान, श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ तो कैसे उस समय, जहां भक्ति मार्ग में तो ये दिखाते हैं, जहाँ जन्म हुआ कितना प्रकाश हो गया, जिससे उसके ईश्वरी शक्ति का महत्व बताते हैं। परंतु हमने देखा जब परमात्मा ने, ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, परमात्मा जिसको हम सब, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मानती हैं, उनको हम इन आंखों से देखते नहीं हैं, न देखते हुए भी मानते आते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति, कौन सा उनका कर्तव्य और किस प्रकार से उसने कर्तव्य किया जो न देखते भी उसकी मान्यता सर्व में व्यापक है। और उस मान्यता के आधार पर अगर उसी श्रद्धा भाव से याद करते हैं, उसके उन अलौकिक कार्य को समझ करके उसी रीति से कुछ भी करते हैं, तो उसका थोड़ा सा फल उस घड़ी के लिए मन की शांति अनुभव करते हैं। जब भक्ति मार्ग में केवल मान्यता इतना फल देती है, हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया जब पिताश्री के द्वारा परमात्मा शिव उसको हम भी इन आंखों से नहीं देख सके, परंतु पिताश्री के चेहरे, पिताश्री के द्वारा जो महावाक्य हमने सुने, वो एक शब्द भले ज्ञान कामन था कहने में, लेकिन एक नई नॉलेज जैसे जैसे हम सुनते गए, पहला लेसन शुरू शुरू में पहला लेसन, हे आत्मा, इस शरीर को धारण करके इस सृष्टि मंच पर अपना कार्य, अपना कर्म करने के लिए मैं आई हूं। अपने को हम ऐसा रियलाइज करें। अब उसका विस्तार तो आप सुन चुके हैं, लेकिन जब शुरू शुरू में हम जो भी आए, जैसे ही ये नॉलेज मिली, ये शरीर पांच तत्वों का, मैं इसे न्यारी, जैसे जैसे सुनते गए और अधिकतर जो भी आए पहले दिन, जैसे जैसे सुनते गए और स्वयं को इस शरीर से न्यारा अनुभव करते हुए और कुछ समय के लिए एकदम शरीर भान से पर हो गए, जो सुनाने वाला सुना के जब देखा कि अब ये एकदम पर है, तो उन्होंने अपना सुनाना बंद कर दिया और फिर कुछ समय बैठे रहे। फिर भी वो उसी शांत मुद्रा से और यहाँ के भान से पड़े, कोई 15 मिनट जो जो आते थे। हम भी जब आए तो शुरू में आधा पौना घंटा तक तो ऐसे ही जैसे उस आनंद में मग्न होकर के बैठे हैं। कुछ समय के बाद जब वो समझाने वाले फिर धीरे धीरे बोले, तो जरा फिर से, तो उस बात ने महसूस कराया बरोबर अंदर की चेतन शक्ति जो इसमें होते भी हम उसके भान से परे हो जाएं, और अंदर इतनी खुशी और शक्ति महसूस हो, इतनी फिर जब शरीर में की महसूसता आए, तो भी जैसे हम उस आनंद में मग्न हो करके और कुछ समय तक चलते रहे, तो ये अनुभव फिर आगे उमंग आने लगा, और भी सुनते रहे। और जब भी पिताश्री सामने आते थे तो देखते पिताश्री रूप तो साधारण ही रहा, परंतु साधारणता में जो चेहरे से वो शक्ति, चलन से ऐसे महसूस होता था जैसे हम देवताओं के चित्र देखते थे, जैसे विष्णु का चित्र देखा, तो विष्णु के चित्र स्टैंडिंग होता है, खड़ा होता है, उसी प्रकार से ऐसे बिना बिना अनुभव होते रहे जो भारत में मान्यता भक्ति मार्ग में देवताओं के प्रति है, वो जैसे 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 बाबा सनम कहते थे, आकर के सुनाते थे, बाबा की दृष्टि से, बाबा के जो भी बोल थे, जो भले गीता में कुछ कुछ महावाक्य आते हैं पर उसका यथार्थ अर्थ, उसकी समझानी, उसका स्पष्टीकरण, तो ये सब बातें देखते देखते ऐसे लगता था नहीं, ये कुछ नई बातें हैं और ये सुनाने वाले आज दिन तक कोई ने भी नहीं सुना। और जब भी बाबा कोई भी गीता के महावाक्य थोड़े से रिपीट करके, भाई गीता में ऐसे लिखा है, और उसका अर्थ सुनाते थे, तो जो भी जितने भी बैठे हुए होते थे कोई न कोई उससे सुन करके और उसी अवस्था में चले जाते थे, जो उनको कभी साक्षात्कार में, कभी निराकार का प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार, कोई को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार होते रहे, जिससे अधिक निश्चय होता गया कि ये परमात्मा, अब हम आत्माओं को ये जो नई नई नॉलेज दे रहे हैं, जिससे जिन्हों को भी ये महसूस होता रहा जीवन में, फौरन जीवन में परिवर्तन, बोलने में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, खान पान अगर किनों का शुद्ध नहीं रहता था, वेजिटेरियन नहीं थे, नॉन वेज वगैरह खाते थे, वो बदलते गए, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, मुझे अपने जीवन में के कर्मों में शुद्धता लानी है। और उस समय में मुख्य समझानी, जैसे मूर्ति है, मूर्ति मंदिर में रखते हैं, मंदिर को कितना स्वच्छ रखते हैं, क्यों, मूर्ति की जीवन, मूर्ति के जो चरित्र भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्रों में गाए जाते हैं, कितने ऊंचे, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र जीवन उन्हों की, तो ये जो उन्हों की महिमा और ये सब था, उसके आधार पर मूर्ति को ऐसा बना के उनके मूर्ति के चेहरे से वह शक्ति भक्तों को महसूस होती। तो ये पहचान, हमको ये पहचान, आत्मा मूर्ति है, ये शरीर मेरा मंदिर है। अभी गीत का अर्थ भी हमें स्वयं की रियलाइजेशन और उस रियलाइजेशन के साथ ये हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं उसकी पहचान देते हैं। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं शरीर और आत्मा, पहले मैं आपको बता रही थी कि आत्मा मूर्ति के समान है और ये शरीर एक मंदिर के समान है। मंदिर में मूर्ति को बिठाया जाता है। तो जब हम लोगों ने हमने पहले ये बात सुनी तो फिर उसका अपने से अनुभव करने लगे, इस पर विचार करके सचमुच ऐसे समझ में आया मूर्ति मंदिर के अंदर है और अंदर मूर्ति के कारण मंदिर का महत्व है। मंदिर में जो कुछ भी किया जाता है मंदिर में काम करते हैं, लेकिन मूर्ति स्थिर होकर के मूर्ति इतनी ऊंची है जिस कारण मंदिर की मान्यता है। तो जब हमें ये पहचान मिली कि मैं आत्मा हूं और सचमुच जब इस बात को रियलाइज किया जाता है, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, बॉडी डेड है, आत्मा जब है तो सब काम करती है। सचमुच जब इस बात को अंदर सोचा जाए तो रियलाइजेशन हो गई कि बरोबर अंदर जो शक्ति है वो इसे काम कराती है। वास्तव में जब वो शक्ति है तब हम कहते हैं मैं ये करता हूं, मैं कहने वाला। वास्तव में अंदर की शक्ति जिसको हम आत्मा कहते हैं, शरीर में बोलने की शक्ति नहीं है, चेतन शक्ति आत्मा है। और शरीर से जो हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन तो भागता है, इस बात को जब हम अगर सोचें, वास्तव में मन मुझ आत्मा की चेतन संकल्प शक्ति है, विचारधारा है। भागता मन इसलिए है जो हम जो कुछ इन आंखों से देखते हैं, जो इन कानों से सुनते हैं, जो इस व्यवहार से शरीर से व्यवहार में आते हैं, हमारा उन्हीं बातों पर विचार चलता है। कोई अच्छी बात लगती, कोई बुरी बात लगती, वही विचार। बुरी बात लगेंगी तो उसके लिए इस प्रकार के बुरे बुरे विचार चलेंगे। आम रीति से कहेंगे आज मेरे मन में बहुत, मन तो बड़ा भागता है, मन तो बड़ा चंचल है, मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। परंतु जब ये नॉलेज मिलने से हम अंदर में रियलाइज करते थे मन कहाँ भागता है, जो कुछ इस संसार में देखते हैं, और अंदर जो आत्मा है, हम जब ये पहचानते हैं मैं परमात्मा की संतान हूं, उसको हम याद करें तो मन भागने से रुक जाएगा। कहाँ भागेगा? हमारा अटेंशन अंदर आत्मा और आत्मा के पिता परमात्मा पर जाएगा। पहली बात तो जब हम अंदर अपने को सोचते हैं तो एक मन स्थिर शांत हो जाता है। वह शांति अंदर महसूस कराती है कि जो कुछ बाहर में देखते हैं अगर उसी में ध्यान देते हैं तो मन के बहुत संकल्प इधर उधर के ख्याल चलती है। परंतु देखते हुए अगर हम ये याद करें जहां तक मेरी जरूरी कार्य है वो करते रहें, बाकी और आगे सोचने की जब अभी हमको वो कार्य नहीं करना है तो उसके लिए अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर है इस बात पर अपना पूरा अटेंशन बुद्धि से इस बात को अच्छी रीत से समझना होता है, और ऐसे नहीं कि अभी अभी सुना और हम उस बात को जब रियल सल में लाते हैं, जब थोड़ा विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा अंदर वो अभ्यास के रीति से ट्रायल करते हैं, तब रियलाइजेशन में आता है कि बरोबर जो कुछ ख्यालात चलती है उसके अनुसार कर्म। अभी हम आंखें देख रही हैं, परंतु अगर जो कुछ देखती है उस पर हम कुछ सोचे नहीं तो हमारे बहुत विचार नहीं चलेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो कुछ देखेंगे उस पर उसका कुछ फलाना कौन है, कहाँ से आया है, पहचान है, तो वो बात उसकी याद आएंगी, तो उसी की बातें याद आने से उनके चिंतन में मन चलता है। अगर उसके लिए अच्छी जानकारी है तो अच्छे विचार, उनके प्रति अच्छी ख्यालात। अगर उसके प्रति अच्छे जानकारी नहीं है तो मन का बुरे विचार चलते हैं। मन की ख्यालात वर्तमान समय मनुष्य की जो कुछ बातें सुनी हुई देखी हुई, शरीर के साथ जो कुछ व्यवहार होता है उसी के अनुसार उसका दृष्टिकोण बन जाता है। परंतु अगर हम थोड़ा इस बात पर सोचें, जब हम सब एक पिता की संतान है, ये मानने वाला कौन है और हम क्यों मानते हैं, जब यही जो देखते हैं वही सत्य है, तो ये मान्यता हमारी कैसे बनी। अगर इसको हम थोड़ा गंभीरता से अंतरक वृत्ति से सोचेंगे तो इस बात को रियलाइज कर सकेंगे कि अंदर जो शक्ति है जिसको हम चेतन शक्ति आत्मा कहते हैं, जो अविनाशी है, अगर हम अपने को बॉडी मानते हैं, हम उसको बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, तो बॉडी तो जब मन शरीर छोड़ता है बॉडी इधर ही रह जाती है, वो ख्यालात कौन लेके गया। फिर ये भी जो हम कर्म इस बॉडी के साथ करते हैं उस कर्मों के अनुसार हम दूसरा जन्म लेते हैं। दूसरा जन्म लेने वाले कौन, कर्मों का खाता किस में बना, कैसे बना, तो ये जो इंटरनल बातें हैं सूक्ष्म, जिसका स्थूल में वर्णन नहीं है। वैसे तो कहें साइंस अथवा जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, इन बातों के खोज से कुछ कुछ बातें कहते हैं और उन बातों पर जो विचार करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको कुछ कुछ उसका अंदाज लगता है। परंतु स्थूल रीति से, स्थूल इंस्ट्रूमेंट से जो भी कुछ है कुछ हद तक जानते हैं। अनादि काल से जो बात चली आ रही, सृष्टि चक्र अनादि चलता है, मनुष्य जीवन अनादि, यूनियां बदलती जाए, ये जन्म बदलते जाते हैं, हर यूनि का अपना अपना हिसाब है, पर मनुष्य यूनि में जन्म बदलते हैं। कहा जाता है जैसे संस्कार वैसा जन्म, संस्कार किस में रह जाते हैं, किस रूप से रहते हैं, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं वे कोई स्थूल इंस्ट्रूमेंट से नहीं जानी जाती है। ठीक है, इसको चलाए या नहीं। तो इन बातों को समझने के लिए वैसे तो सुबह के सेशन में आत्मा और मन बुद्धि की रियलाइजेशन, उसकी डिटेल समझानी तो मिली ही होंगी, लेकिन इसका अनुभव जितना हम स्वयं इसकी रिहर्सल करेंगे, जितना हम अंदर इसको पहचानेंगे, अगर हम अपनी विचारधारा को अंदर ही अंदर सोचते हैं तो स्वयं को पता चलेगा शरीर कुछ काम नहीं करता है और अंदर सोचने वाला ये कौन सी शक्ति है। सहज रीति से ये हमें जानकारी मिलती है कि अंदर और शक्ति है जो ये सब कराती है, जिसको आत्मा कहा जाता है। अभी ये बातें थोड़े समय में जानना, जानकारी मिल जाती, लेकिन एक्सपेरिमेंट अनुभव के लिए जितना हम उसको एक्सपेरिमेंट करें, जितना हम उसको अंदर से अपने बुद्धि से इसको सोचें, सोचने से हमें उसका प्रूफ मिलता है अपने आप से कि बरोबर अंदर जो शक्ति है जिसमें सोचने की, समझने की और अपनी कर्म इंद्रियों से काम कराने की शक्ति है, वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति मैं हूँ। अब ये रियलाइजेशन अभी तक जो भी सुनाने वाले हैं, शास्त्र सुनाते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, पूरी रियलाइजेशन कोई करा नहीं पाया है। और साथ में परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं, तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ये जो हम शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं, तो इस सृष्टि मंच पर हम अपना पाठ बजाते हैं। ये सारा ड्रामा है, ड्रामा के अंदर भिन्न भिन्न पाठधारी है, वो अपने अपने पाठ बजाते हैं। ये पाठधारी कितने समय से पाठ बजाते आते हैं, तो ये गॉडली नॉलेज इसलिए कहा है क्योंकि स्वयं परमात्मा ने, परमात्मा को विश्व का रचयिता माना जाता है, क्रिएटर ने अपनी क्रिएशन कैसे आके की है, वो सारी डिटेल समझानी कुछ आप लोगों को मिल चुकी है, कुछ और सेशंस में मिलती रहेंगी। इसलिए अभी के समय अनुसार तो मैं इतना ही कहेंगी, जितना जितना हम सेल्फ अर्थात आत्मा को पहचानेंगे, स्वयं को, आत्मा, परम आत्मा की संतान, मैं अवनाशी हूँ, अवनाशी वस्तु वो ही हो सकती है जो सत्य है, तो मैं आत्मा सत्य अवनाशी अजर अमर, जब ये पहचान तो सत्य वस्तु शुद्ध होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, श्रेष्ठ कर्म, आज की दुनिया में जो विकारों के वश मन कर्म करके और कर्मों के वश हो करके पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह जो खुद ही उसे दुखी होता है, इन सब से छूटने की सहज विधि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मैं जो अनादि अविनाशी सत्य पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, अपने गुणों को पहचान, अपनी जीवन के कर्मों में इन गुणों को लाते रहें। हमें परमात्मा की पहचान से जितना जितना बुद्धि योग मन की एकाग्रता से ईश्वर की याद से मैं उनकी संतान हूँ, यह अंदर का विश्वास हमारे अंदर शक्ति और खुशी जागृत करता है, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला करके और आगे स्वयं भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। जब स्वयं को कोई अच्छी चीज मिलती है तो औरों को भी ये कराते हैं। और अब समय के अनुसार दुनिया के परिवर्तन काल में फिर से परमात्मा हम बच्चों को ये शिक्षा दे करके विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। आप सब यहाँ आए हैं, जरूर इन बातों को अच्छी रीत से समझ, अपने जीवन में अनुभव करके अपने साथ अनुभव ले जाएंगे और आगे परमात्मा के कार्य को पहचान, स्वयं भी उस कार्य से सबको इसका लाभ देते रहेंगे।
ओम शांति।
इतना ही कहती हूँ, आगे तो आपको और भी मिलता ही जाएगा।
So let us all thank Dadi for her sharings. With two hand clap, please.